నమః విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాద్దేశతారిణే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాశాది గౌర్భక్తవృంద
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
ఓం నమో భగవతే చైతన్ చంద్రాయ चैतन्य चरितामृत की कथा कहते समय वासुदेवाय के बदले चैतन्य चंद्राय बहुत अच्छी आदत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे दधि सीता घृत मरीच कर्पूर मिलने रसाला है अमृत मधु भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार शांत रति दास्य रति सख्य रति आर वात्सल्य रति मधुर रति ए पंच विभेद रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में श्रीपाद रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति के प्रकार भाव के प्रकार बता रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रति किस किस प्रकार से कौन कौन भक्त किस कैटेगरी के कैसे भक्ति करते हैं, क्या क्या भाव होता है और उस भाव के अनुसार कैसा कैसा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, रस मिलता है, इसको बता रहे हैं। भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार, भक्त के भेद से विविध प्रकार के भक्त होने से रति भेद मुख्य रूप से पांच प्रकार का होता है। भगवान कृष्ण में आसक्ति प्रेम पांच प्रकार का होता है, शांत रति दास्य रति सख्य रति और वात्सल्य रति मधुर रति ए पंच विभेद। रति भेद कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद, भक्त भेद से रति भेद मतलब प्रेम भेद होता है और प्रेम भेद से फिर रस भेद होता है, उस तरह का आनंद आता है। तो यहाँ हम लोग जो बहुत प्रसिद्ध है पांच प्रकार के की रति है, भगवान में अनुरक्ति है, प्रेम है, उसको सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही स्पष्ट भाव से बोल रहे हैं भक्त भेद, भक्त भेदे रति भेद, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ में आ सकता है। अनेक प्रकार के भक्त हैं भगवान के, परिकर हैं वैकुंठ में, गोलोक में और स्वर्ग में भगवान के भक्त हैं, पताल में है, शीतल लोक में है, इस पृथ्वी पर है और भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त। भगवान ने कपिल देव तो यहां तक कहते हैं कि जितने जीव हैं उतना भेद हो सकता है भाव में अलग अलग। हम ही लोग इतने आदमी बैठे हैं लेकिन कृष्ण के प्रति सबके भाव में कुछ न कुछ अंतर होगा, सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं लेकिन कुछ न कुछ भाव में अंतर होगा, कोई सख्य भाव का होगा, कोई दास्य भाव, कोई शांत भाव और कोई मधुर भाव, वात्सल्य भाव, और उसमें भी कुछ न कुछ भेद है, कुछ न कुछ भेद है, रति भेद है भगवान में। रति भेद मतलब अनुरक्ति भेद, प्रेम भेद। तो भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार। मुख्य रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेम के पांच प्रकार हैं। शांत रति, दास रति। रति का अर्थ है अनुरक्ति, भगवान में लग जाना, रच पच जाना, इसको रति कहते हैं। रति का अर्थ समझते हैं ना, किसी में अनुरक्त हो जाना, एकदम खो जाना, उसी में लगे रहना, इसको रत होना कहते हैं। तो रत का जो भाव है उसको रति कहते हैं। भक्त भेदे रति भेद पांच प्रकार, पांच प्रकार का होता है। तो गिना रहे हैं, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, मधुर रति, ये पंच विभेद। तो हम इसको भक्ति के समय सिंधु से यहाँ पढ़ करके बता रहे हैं। शांत रति विहाय विषय उन्मुख्यम निजानंद स्थिति रजतः आत्मनः कथ्यते सूत्र स्वभावः समैत्यसौ प्रायं समप्रधानानां ममता गंधवर्जिता परमात्मतया कृष्णे जाता शांतरतिर्मता। विहाय विषयं मुख्यं, विषय की उन्मुखता को, विषय के प्रति आकर्षण को पूरा पूरा छोड़ करके निजानंद स्थिति जतः आत्मन, मन की जो अपने स्वरूप के आनंद में स्थिति है, इसको महात्माओं ने, विद्वानों ने सम कहा है। समो मन निष्ठता बुद्धि भगवान ने कहा है इसको। प्रायम सम प्रधाना नाम, और इस प्रकार से जो भगवान निष्ठ हैं, संसार को पूरा पूरा विस्मृत होकर के, यहां तक कि कृष्ण भक्त स्वर्ग मुक्ति नरक करी माने, जो भक्त शांत रति के लक्षण बता रहे, जो भक्त स्वर्ग और मुक्ति तक को नरक समझ चुका है पूरा, इसलिए संसार के भोग या मुक्ति आदि की वासना से छूट करके केवल कृष्ण में अनुरक्त है, इसको कहते हैं समो मन निष्ठता बुद्धि, बुद्धि की मुझ में निष्ठा, इसको सम कहते हैं। तो इस प्रकार के सम प्रधान जो लोग हैं, उनका कृष्ण के प्रति जो भाव है, ये भाव रहता है कि कृष्ण परमात्मा है और सबके परम प्रिय है, ये भाव होता है। परब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके इस रति को, कृष्ण में इस प्रकार के भाव के अनुसार जो अनुरक्ति है, इसको बड़े बड़े विद्वानों ने, रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, शांत रति कहा जाता है। इसमें दो प्रधान है, एक तो भोग त्याग और कृष्ण निष्ठा, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्ति, इसको शांत रति कहते हैं। हम लोग जो अंग्रेजी में अनुवाद सुनते हैं न्यूट्रल, ये सब बिल्कुल गड़बड़ है, थर्ड क्लास का है, अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द ही नहीं है इसको कहने के लिए। ये रति शब्द बताया, शांत रति, भगवान में पूर्ण अनुरक्ति है, पूर्ण निष्ठ है मन। आत्मनः कथते सूत्र स्वभाव समय, यही है मन का स्वभाव, जब पूर्ण रूप से स्वर्ग मुक्ति या किसी भोग को, भोग की उन्मुखता को छोड़ करके, मतलब विमुख होकर के उसे, और पूर्णतः कृष्ण में निष्ठ हो जाता है, इसको सम कहते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में जो भक्त हैं और भगवान में ऐसी उनकी आसक्ति है, परमात्मा के रूप में, परब्रह्म के रूप में, तो उनके इस भाव को, इस प्रेम को शांत रति कहा जाता है। इसको शांत क्यों कहते हैं, क्योंकि सम शब्द से शांत बना हुआ है, वे शांत रति। और परंतु एक बात भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ममता गंध वर्जिता, यह जो शांत रति है, भगवान श्री कृष्ण में ममता गंध से रहित है। जैसे दास्य सख्य वात्सल्य मधुर में कृष्ण के प्रति ममता अधिक होता है, ममता रहती है, कृष्ण मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, कोई संबंध मान करके मेरापन का भाव रहता है। तो इसमें संबंध है प्राय नहीं मानना जाता है। जगदीश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, तो इस प्रकार से जो भगवान में अनुरक्ति है, परंतु विषय भोग आदि और मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो स्वर्ग को और मुक्ति को भी कृष्ण भक्त नरक समझता है। हे हरिबोल, क्या उझाई करने लगे, शांति से सुने। तो कब भक्तों के मन में संदेह है चाहे अज्ञान रहता है कि शांत भक्ति क्या है, प्राय उपेक्षा करते हैं, नहीं मालूम होता है, इसी को इसको क्लियर करना है। रति शब्द है शांत रति, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये पांच रस हैं, यही शांत रति बाद में शांत रस बनता है विभाव आदि से युक्त होकर के अपने अनुसार। इस प्रकार के जो भक्त हैं उनको शांत भक्त कहते हैं। इसमें उदाहरण आगे दिया जाएगा। चार भाई सनकादि, उनको सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। इनमें भगवान के प्रति शांत रति है। शांत रति का अर्थ है कि पूर्णतः भगवान में लगे रहते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, भगवान के आनंदमय स्वरूप का आस्वादन करते रहते। पर इसमें सेवा वासना या ममता या संबंध नहीं है, अनुरक्ति पूरे पूरे भगवान में है, लेकिन कोई संबंध मानना या सेवा की स्पूर्णा नहीं। इसलिए कहते ममता गंध वर्जिता, रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यह रति, इसको शांत रति कहते हैं। और दास्य रति को भी रूप गोस्वामी पाद ने इसको प्रीति रति कहा है। प्रीति स्वस्मात् भवन्ति ये न्यूना तेनुग्राह्या हरेर मतः आराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरिहोदिता तत्र शक्तिर्यन्यत्र प्रीतिसंहारिणी यशः। दास्य रति किसको कहते हैं, जो श्री कृष्ण से, भगवान से, मतलब श्री कृष्ण के और भी बहुत से रूप है, जैसे भगवान नारायण से या श्री कृष्ण से स्वयं, जो अपने को न्यून मानते हैं, बहुत हीन मानते हैं, जो भक्त भगवान से अपने को हीन मानते हैं और भगवान के जो कृपा के पात्र हैं, अनुग्रह के पात्र हैं, कृष्ण उनके प्रति भाव रखते हैं कि मेरे सेवक हैं, वो अनुग्रह का भाव रखते हैं, और जो अपने को कृष्ण से सब तरह से हीन मानते हैं, ये जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, हम हीन हैं, दीन हैं, और आराध्यत्वात्मिका रति, कृष्ण को मानते हैं कि हमारे आराध्य हैं, हमें अपने कर्मों से अपने भावों से भगवान को प्रसन्न करना है, स्वामी हैं, तो इस प्रकार की जो रति है श्री कृष्ण में, इसको प्रीति रति कहते हैं या दास्य रति कहते हैं। इसमें दो विशेषता है, जैसे शांत भक्त में दो प्रकार की विशेषता है, भोग मुक्ति की वासना आदि पूर्ण विस्मृत और कृष्ण में निष्ठा। यहां पर क्या है, तत्र आसक्ति, भगवान में आसक्ति होती है। निष्ठा होना एक अलग बात है, उससे थोड़ा बढ़ा हुआ यह भाव है, इसमें आसक्ति होती है कृष्ण में। और अन्यत्र कृष्ण के अलावा अन्य वस्तुओं में, अन्य लोगों में प्रीति संघारणी ही असल, प्रीति का संहार कर देता है। यह रति दास्य रति कृष्ण में आसक्ति और अन्यत्र प्रीति संहारिणी, अन्य जगह कहीं प्रेम नहीं रह जाता है। आप पूछ सकते हैं कि शांत रति से इसकी क्या विशेषता है? इसकी एक विशेषता है आसक्ति और अन्यत्र कृष्ण के अलावा कहीं प्रीति नहीं, कहीं प्रीति नहीं। ये तो गुण कहीं प्रीति नहीं, ये तो उसमें भी है शांत रति में भी, लेकिन आसक्ति भगवान से संबंध, मैं सेवक हूं, भगवान स्वामी है, इस प्रकार के भाव इसमें ज्यादा है। सेवा की भावना रहती है सुखी करने की भगवान को, तो इसको प्रीति भक्ति कहते हैं, दास्य भक्ति कहते हैं। और सख्य रति ये शिव तुल्या मुकुंदस्य ते सखाय सता मता साश्याद विश्रम 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 रूप ऐसा रति सख्य में हो दीक्षत परिहास प्रहास आदि कारणीयम अजंत्रणा। जो मुकुंद के तुल्य मानते हैं अपने को, एकदम समान श्री कृष्ण के प्रति जिनका समान भाव है, श्री कृष्ण भी उनको अपने समान मानते हैं और जो श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं भक्त भगवान के परिकर ब्रज में या हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में या मथुरा में, जैसे अर्जुन आदि हैं भीम अय्या अर्जुन, ये शिव तुल्य मुकुंद से ते सखाय सताम मता। जो अपने को मुकुंद के समान भाव रखते हैं और उम्र में भी लगभग समान है, तो सज्जनों के मत से वे सखा माने जाते हैं और उनकी जो प्रीति कृष्ण में होती है, रति होती है, उस सख्य पर विश्रम्भ विश्रम्भ प्रधान होती। विश्रम्भ का अर्थ होता है सहज विश्वास प्रेम, अभेद व्यवहार में खान पान में किसी लीला में सहज विश्रम, यह गुण है सख्य का। विश्रम्भ विश्रम्भ शब्द का अर्थ प्रेम होता है, लेकिन उसमें पूर्ण विश्वास, विश्वास दूसरे प्रकार का, ये हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा है, ये है वो है। कभी कभी ब्रज में मित्र गण ये भी कहते हैं कृष्ण हमारी रक्षा करेगा, ये क्या करेगा, अगर ये मान लीजिए अजगर भी होगा तो क्या करेगा। वास्तव में अघासुर मुंह फैलाया था और तो अजगर था ही, लेकिन बच्चे आपस में कहने लगे कि ये वृंदावन की कि कोई शोभा विशेष है, कोई शोभा है, पर्वत है या सड़क है या दवानल लगा है इसलिए गर्म हवा चल रही है। ये किसी ने कहा कि हो सकता है ये अजगर हो तब तो क्या करेगा, बकारी यही पर है ना, जैसे बक को फाड़ दिया वैसे इसको भी फाड़ डालेगा। इसीलिए इस विषय के आलंबन इस रति के भगवान कृष्ण है, जिनके बारे में रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि बलवान वीर, यह भी एक विशेषण है। तो सखागण इस सखागण के मन में जो प्रीति है कृष्ण के प्रति विश्रम्भ प्रधान, इस रति को सख्य कहा गया है। इसमें चेष्टाएं क्या होती हैं, परिहास, परिहास का अर्थ है कृष्ण की हंसी उड़ाना, जैसे कभी कभी अर्जुन भी भगवान को कहते थे लेकिन कृष्ण तुम कुछ भी कहो पर जरासंध के डर से तुम और बलराम भागे थे ना। ठीक ठीक, ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते, हमने कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है, तुम इतना डरपोक हो। अर्जुन तक इस प्रकार की बात करते थे और सखा आदि तो कहना ही क्या, ब्रज में रोज ही परिहास होता रहता था, चोर चोर कहा करते थे, माखन चोर कहा करते थे सखाया। कभी कभी प्रयास करते थे कि तुम्हारे इस अवगुण के कारण तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा आगे चलने में, छोड़ दो, दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो छोड़ दो छोड़ दो, आगे का देखो, नाम डुबा रहे हो नंद बाबा का। इस तरह से सखा कृष्ण से प्रयास करते थे। और प्रहास, प्रहास का अर्थ ठठा करके खुल करके हंसना, कोई बात कह करके कोई दृश्य देख करके हंसना। भगवान से कोई भेद नहीं, कोई संकोच नहीं, बड़प्पन का भाव नहीं, बिल्कुल समान का भाव। और प्रहास आदि करणियम अजंत्रणा, बिना कंट्रोल के, उनकी जो प्रीति है इस प्रकार की, श्री कृष्ण से बिल्कुल सख्य भाव में, और इस तरह से रचे पचे हैं कृष्ण में, तो इसको सख्य रति कहते हैं, अथवा वात्सल्य रति। और वात्सल्य रति किसको कहते हैं? गुरवो ये हरे रस्य ते पूज्या इति विस्तृता अनुग्रह मई तेषाम रतिर वात्सल्य मुच्यते। जो भगवान के गुरुजन हैं, माता पिता बड़ा भाई या उपनंद महाराज आदि, द्वारका में भी मथुरा में भी जो गुरुजन हैं, जैसे वसुदेव जी हैं, माँ देवकी है, अक्रूर जी हैं, ये गुरुजन हैं बड़े श्रेष्ठ जन, उनके हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है, वत्सल भाव, और ये श्री कृष्ण के पूज्य हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, यदि श्री कृष्ण इनको प्रणाम करते हैं, इनको हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगते हैं, तो ये आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, और यहां तक कि भव्य आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक, माता पिता और जो संबंध में बड़े हैं, ये सब लोग आशीर्वाद देते हैं कृष्ण को। इस प्रकार कृष्ण के प्रति जो सहज वात्सल्य है कि श्री कृष्ण सफल बने, इसकी कीर्ति हो, महान बने, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस प्रकार का कृष्ण के प्रति जो भाव है, और इस भाव से जो अनुरक्ति है, इसको वात्सल्य रति कहते हैं। इसके पात्र हैं भगवान के माता पिता और संबंध में और श्रेष्ठ लोग, और जिनसे पढ़े हैं गुरुजन, जैसे संदीपनी गुरु या और भी अनेक गुरुजन हैं, उनकी प्रीति कृष्ण में क्या है? अनुग्रहमयी, वे कृष्ण पर अनुग्रह करते हैं, इनकी भंका भाव है कि हम कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण को पोष रहे हैं। दास्य भाव में यह है कि भगवान ये सोचते हैं कि ये हमारे अनुग्रह के पात्र हैं, और वात्सल्य भाव में भगवान पर ही अनुग्रह किया जाता है, भगवान का हित चाहा जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण में जो आसक्ति है, रति है, इसको वात्सल्य रति कहा जाता है। इसमें क्या क्या चेष्टा है? एकदम लालन भव्यासी चिबुक स्पर्शनाधिकृत, श्री कृष्ण का लालन करना, लालन प्यार करना, और भव्यासी आशीर्वाद देना, और चिबुक स्पर्शन आदि, ये सब चेष्टाएं होती हैं गुरुजनों की, माता पिता आदि की। इसमें ये नहीं होता है कि ओम जय जगदीश हरे, कभी नहीं होता है ये इस भाव में, बल्कि भगवान को ही आशीर्वाद दिया जाता है, भव्य आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद देते हैं। ये भाव हमेशा केवल भगवान को बड़ा कहना कि आप बड़े हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है, ये भाव ठीक है, लेकिन कुछ और सुपीरियर भाव है जो भगवान को ही आशीर्वाद दे, भक्त उनका उनकी मंगल कामना करे, उस रस का कितना कृष्ण आस्वादन करते होंगे। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, भगवान कहते हैं कि मेरी मां पुत्र मान करके माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन लालन, मेरा लालन करती है पालन करती है, और अति हीन ज्ञाने करे नहीं माता मोरे पुत्र भावे करे न भर्षण करे न भर्षण, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, मुझको अति हीन समझती है कि बच्चा है इसको भोजन का भी ज्ञान नहीं है, ये रोटी और माखन के बदले मिट्टी भी खाने लगता है, इतना हीन ज्ञान है इसको, जबकि रोटी और मिट्टी में भी अंतर नहीं समझता है, कितना अपक्व बुद्धि है इस बच्चे की। माँ सोचती है तो डांटती है, क्यों माटी खाया, माटी उगलो माटी उगलो, ये भाव है वात्सल भाव, अति हीन ज्ञान करे लालन पालन। अरे माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, मैं मुझे बांधती है मुझे अच्छा बनाने के लिए कि चोर न हो बदमाश न हो, तो हमको उखल में बांधती है, हमको मारने की धमकी देती है, मेरा लालन पालन करती है। इस प्रकार की भगवान याद करते हैं, इस रस का स्वादन करते हैं, और भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति ये भाव है उसको तो और अधिक सुखी करता है। उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जा रहा है और उसके कारण रस आनंद भी बढ़ रहा है, तो एकदम लालन भव्यासी चिबुक स्पर्शन आदि के, और चिबुक स्पर्श गुरुजन जो होते हैं कृष्ण को बच्चा समझ कर चिबुक स्पर्श करते हैं, जैसे यहाँ पर माँ यशोदा कर रही है। और मधुरा रति मिथो हरेर मृगाक्षश्च संभोगस्याधिकारणम मधुरा पर पर्याया प्रियता क्षोदिता रति अस्याम कटाक्ष भ्रुक्षे पर प्रिय वाणी स्मिता दय। मधुरा रति कहते हैं उसको जो भगवान श्री कृष्ण के साथ मृगाक्षी का मृगाक्षियों का मतलब उनकी प्रेयसियों का, दो प्रकार की प्रेयसी है, स्वकीय या परकीया, तो दोनों के लिए कह रहे हैं भगवान की प्रेयसियों का जो श्री कृष्ण के प्रति संभोगस्यादि कारणम कृष्ण से मिलन में जितने भी सहायक तथ्य हैं, दर्शन श्रवण स्पर्श और भी जितने भी केली गुह्य भाषण आदि जो भी हैं, ये सब दिव्य अप्राकृत, ये सब कारण बनते हैं संभोग के। संभोग का मतलब है मिलन, दर्शन मिलन लीला करना, इस प्रकार के का जो भाव है भगवान की प्रेयसियों का जो श्री कृष्ण की सेवा में रहती हैं, हमेशा श्री कृष्ण मिलना चाहती हैं, पर उनका भाव क्या है कि श्री कृष्ण हमारे प्रिय हैं, तो भगवान की प्रेयसियों के इस भाव को प्रियता या मधुर रति कहते हैं, मधुर रति कहते। इसमें चेष्टाएं क्या होती है, कटाक्ष भ्रुक्षेप, कटाक्ष तिरछी चितवन से देखना, भौहें मटकाना, बहुत मधुर वचन बोलना या मुस्कुराना, ये सब चेष्टाएं होती हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जब अस्थाई भाव ये पांचों जब विभाव अनुभाव और सात्विक भाव और संचारी भाव व्यभिचारी भाव से जब मिलते हैं तब यही रति रस का रूप धारण करती है, बहुत आनंद आता है भक्त को और भगवान को दोनों को, भगवान इसके विषयालंबन है और भक्त आश्रय आलंबन। तो शांत रति किस प्रकार से भक्ति का रूप रस का रूप धारण करती है इसको बता रहे हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वात्सल्य रति मधुर रति, रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। ऐसे पहले ही चैतन्य महाप्रभु बता चुके हैं कि जब ये सब स्थाई भाव रति प्रेम, जब विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भावों से मिलते हैं तो ये अद्भुत रस पैदा करते हैं, अद्भुत आनंद, उसी को भक्ति रसामृत सिंधु कहा जाता है। वो समुद्र जैसा व्यापी बहुत आनंद देते हैं भक्त को और भगवान को दोनों को। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी पाद में थोड़ा लिखा है उसको सुनिए, शांत रति रस, बोले शांत रति कहा गया। अब शांत रति से प्राप्त होने वाला रस, पूर्वोक्तम शांत रति स्वयोग्य विभाव आदि पूर्वोक्त जो शांत रति कहा गया, जब वो विभाव आदि से युक्त होता है, विभाव आदि उसमें मिलते हैं, तो शांत भक्तों के हृदय में श्रवण आदि द्वारा चमत्कार पैदा करते हुए पुष्ट हो करके वह शांत रति शांत रस का रूप धारण कर, शांत भक्ति रस का रूप धारण करते विभाव आदि से मिलकर। ध्यान रखना चाहिए कि विभाव क्या है, जिसे पहले बताया गया, विभाव अनुभाव सात्विक और संचारी भाव, कल ही बताया गया था ना, तो दिमाग में रहना चाहिए क्या उसका अर्थ हुआ। इन चारों के मिलने से शांत रति शांत भक्ति रस का रूप धारण करती है। तो विभाव आदमी जैसे आलंबन विभाव था और उद्दीपन विभाव, तो सुनिए इसमें क्या विभाव होता है। पहले आलंबन बता रहे हैं कि इस शांति रति में भगवान को परमात्मा परब्रह्म आदि रूप में भक्त प्रेम करता है, रति करता है, तो इसमें भगवान का चतुर्भुज रूप ही प्रधान होता है, श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप से भगवान श्री कृष्ण इसके विषय आलंबन है। और कृष्ण अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से लब्ध रति आत्मा राम मुनिगण इस रति के और अन्य जो तपस्वी गण हैं वे आश्रय आलंबन हैं। अच्छा, उद्दीपन क्या है, उपनिषद श्रवण और निर्जन स्थान में वास, ये उद्दीपन का काम करता है, भगवान में और रति पैदा करता है, उनकी जो संप्रधान रति है उसको। तो उद्दीपन ये तो विभाव है। और सात्विक जो अष्ट भाव हैं, सात्विक भाव जैसे स्तंभ अश्रु पुलक आदि, इनमें भी होते रहते हैं, इन भक्तों में भी होते हैं, सब नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते रहते हैं। अच्छा, दास भक्ति रस में दास रति कैसे रस बनती है, आत्मोचित ही विभाव आद्य प्रीति रास्वाद्य नियताम नीता चेतसी भक्ता नाम प्रीति भक्ति रसव मत। दास्य भक्ति को प्रीति भक्ति कहा गया है, जब आत्मोचित विभाव आदि से यह मिलती है रति। आत्मोचित का अर्थ है भक्त, मान लीजिए शांत रति का है, दास रति का है, तो दास्योचित विभाव आदि, ये अर्थ। सबके विभाव अलग अलग होंगे, भक्त जैसा होगा वैसे ही विभाव होगा। विभाव में जैसे आश्रय आलंबन और विषयालंबन और उद्दीपन और अनुभाव और सात्विक भाव व्यभिचारी भाव, तो जैसे भक्त होंगे उसके अनुसार ही आत्मोचित ही विभाव आद्य प्रीति आस्वाद्य नियता। जब यह प्रीति दास्य रति पुष्ट होती है भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय में जब यह भक्ति पुष्ट होती है विभाव आदि के द्वारा, तो इसका नाम होता है प्रीति भक्ति रस या दास्य भक्ति रस। ब्रज में द्विभुज श्री कृष्ण या अन्यत्र भी द्विभुज द्वारकादि में अथवा चतुर्भुज ईश्वर परमाराध्य एवं सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त श्री कृष्ण इसके विषयालंबन है इस दास्य भक्ति के। और हरिदास विशेष आदि जितने भी भगवान के दास हैं किसी भी लोक में वैकुंठ में या द्वारका में मथुरा में या ब्रज में सब जगह हो ये सब आश्रय आलंबन है। भगवान की कृपा की याद करके उनका चरण रज देख करके उनका भुक्त उनकी माला देख करके उनका प्रसाद देख करके या खा करके और उनकी आज्ञा का पालन करके भक्त संग भगवान की कृपा की याद करके चरण रज देख करके उनके भोगे हुए माला वस्त्र या भोजन को देख करके और उनके भक्त का संग मिलने पर इस भाव का उद्दीपन होता है। ये उद्दीपन सख्य रस में सख्य रस और नहीं नहीं दास्य रस के उद्दीपन है। और इसमें क्या होता है अनुभव क्या होता है सर्वापेक्षा अधिक रूपे उनकी आज्ञा का परिपालन यह अनुभव चेष्टा जिसको कहा जाता है भीतर के भाव को जो प्रकाशित करे चेष्टा है उसको अनुभव कहते हैं। कैसे पता चलता है कि इसमें दास्य भाव है इसकी भक्ति है तो भगवान की आज्ञा का प्रतिपालन और भगवान के भक्तों के साथ मित्रता और भगवान में अतिशय निष्ठा एवं पूर्वोक्त नृत्य गीतादि जथा संभव ये सब अनुभव है दास्य भक्त नाचना गाना पूजा करना इत्यादि। स्तंभादि अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं इसमें उद्दीपन भ्रम मद त्रास अपस्मार आलस उग्रता अमर्ष असूया और निद्रा इनको छोड़ करके बाकी सभी व्यभिचारी भाव दास्य भक्त में उत्पन्न होते हैं जिनका नाम लिया गया ये नहीं उत्पन्न होते हैं दास्य भाव में। इनके अलावा और जो 33 हैं इनके अलावा वो सब उत्पन्न हो सकते हैं सख्य भक्ति रस। स्थायी भावो विभावाद्य सख्यम आत्मोचित रिह नितश्चित्ते सताम पुष्टिम रस प्रयान उदीर्यते। स्थायी भाव सख्य रति के साथ जब सख्य भाव वाले भक्त के विभाव अनुभाव सात्विक भाव और संचारी भाव मिल करके जब उस भक्त के हृदय में इस रस को पुष्ट करते हैं तो इसको विद्वानों ने प्रयान रस कहा गया है। सख्य रस को प्रयान रस भी कहते हैं जब सख्य रस की वृद्धि करते हैं। इस रस के आश्रय आलंबन भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे विविध भाषा वेत्ता सुबेश अतिशय बलवान दयालु वीर चूड़ामणि बुद्धिमान क्षमाशील सुखी इत्यादि गुणशाली प्रवक्त द्विभुज या चतुर्भुज श्री कृष्ण इसके विषयालंबन। विभाव में बताया गया है कि विषयालंबन भी भिन्न भिन्न होता है तो विषयालंबन तो सब समय श्री कृष्ण है लेकिन कैसे श्री कृष्ण विविध भाषा वेत्ता सख्य रस में वे विविध प्रकार की बात बोलते हैं। भगवान कभी कभी अपने सखाओं से कभी ब्रजभाषा भी बोलने लगते हैं कभी संस्कृत भी बोलते हैं कभी इंग्लिश भी बोलते होंगे हो सकता है। भगवान विविध भाषा वेत्ता रूप गोस्वामी जी कहते हैं चूंकि भक्तों के साथ हंसना है हंसाना है डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया एक गीत गाते हैं कोई गोपी गा रही है तो इस तरह से भगवान विविध भाषा को जानते सख्य रस में ये अनेक प्रकार से बातें बनाना है बोलना है हंसी मजाक यही करना है। तो पहला गुण है विषय लंबन का कि भगवान विविध भाषा वित्त होते हैं, विविध भाषा जानते हैं। विविध भाषा से केवल मनुष्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही नहीं, पक्षियों की भाषा भी वो खूब बोलते हैं। पक्षी की भाषा, पशु की भाषा, दिन भर बात बनाते रहते हैं और सखा लोग ठठा करके हंसते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो ये विषय लंबन है, विविध भाषा वित्त, सुवेश खूब सुंदर वेश, अतिशय बलवान, इसमें अपना बल भी भगवान प्रकाशित करते रहते हैं और भक्तों के साथ कभी कभी दंगल होता रहता है सख्य भक्तों के साथ। दास्य भाव काले भक्त कभी भगवान से लड़ ही नहीं सकते, लेकिन ये तो रोज ही वृंदावन में गाय चराने जाते हैं तो रोज लड़ते रहते, बाहु युद्ध होता रहता, पटका पटकी, और कभी कभी कृष्ण को ही पटक देते हैं भक्त लोग। तो ऐसे श्री कृष्ण सख्य रस के विषयालंबन है, दयालु, दया गुण भी इनमें प्रकट रहते हैं, वीर चूड़ामणि, बुद्धिमान, क्षमाशील और सुखी। इन सब गुणों से युक्त द्विभुज या चतुर्भुज श्री कृष्ण सख्य रस के विषय लंबन है। जैसे विभाव कहा गया, विभाव मिलता है, तो इसलिए हम बताया जा रहा है कि कौन है विषय लंबन, कौन है कैसा भगवान का कैसा स्वरूप विषय लंबन हो रहा है। और आश्रय लंबन, कृष्ण के जितने भी वयस्क हैं, सम उम्र के लगभग साथी हैं, वो सब इस रस के आश्रय है, आश्रय लंबन। और उद्दीपन क्या है, वयस, वयस का अर्थ एक तो समान आयु, रूप, श्रृंग सिंह वेणु शंख विनोद नर्म हंसी मजाक विक्रम एवं कृष्ण के प्रिय जन प्रेष्ठ जन, ये सब उद्दीपन का काम करते हैं सख्य रस के लिए। सख्य रस के ये सब उद्दीपन है, सख्य रस को और बढ़ाने वाले। और अनुभव क्या है, भीतर का प्रेम प्रकट होता है कैसे, बाहु युद्ध, बाह्य वाहक आदि, केली एवं परिहास आदि अनुभव। श्री कृष्ण के साथ बाहु युद्ध करना, वो युद्ध के लिए नहीं, आनंद में ऐसे होता रहता बाहु युद्ध। और बाह्य वाहक आदि, घोड़ा बनना और सवारी करना, श्री कृष्ण के साथ चलता रहता है। केली, लुका छिपी का खेल खेलना, आंख बंद करके किसी खोजना करना इत्यादि, एवं परिहास आदि। और परिहास कृष्ण कृष्ण की हंसी उड़ाना इत्यादि आदि सब से, और भी हास ठट्ठा करना है, सब ये सब अनुभव है। इनमें सारे सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, पर व्यभिचारी भाव में उग्रता, त्रास एवं आलस्य के अलावा सब व्यभिचारी भाव उत्पन्न होते हैं ऐसे भक्तों। तो आश्रय आलंबन में जैसे द्वारका में, हस्तिनापुर में भीम और अर्जुन है भगवान के सखा, इनके साथ बहुत मजाक होता है। भीम के साथ भगवान बहुत मजाक करते हैं। एक बार भीम गए थे द्वारका, अभी पहुंचे थे, तो भगवान ने जानबूझ करके भोजन पर बैठ गए, भोजन पर बैठ गए तो ये पहुंचे तो निधड़क पहुंचे, इनको कोई रोकने वाला नहीं था, तो बिल्कुल भगवान के अंतःपुर में पहुंच गए और भोजन भगवान कर रहे थे, वहां पर किसी भगवान के परिकर ने रोका कि अभी भगवान द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, भोजन कर रहे हैं और मुझे भूख नहीं है क्या, भीम लगे कहने, भोजन कर रहे तो उसका मैं छीन कर थोड़े खा जाऊंगा। लेकिन किसी ने कहा नहीं, भगवान ने कहा है कि इस समय कोई न आवे, एकांत में भोजन करना चाहे। तो श्री कृष्ण बीच बीच में बोलते जलते, ओह इतना स्वादिष्ट पदार्थ ही बना, और जब भीम से सुन रहे हैं तो उनको एकदम त्वरा हो रही है खाने के लिए, खाने के लिए उमंगित हो रहे हैं, उठ रहे हैं, तब तक कोई रोक रहा है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, तो भगवान कभी पापड़ खा रहे हैं, चर चर बज रहा है तो ये खा रहे हैं, कभी तो पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और उसके आस्वाद को भाषा में या जैसे तैसे भगवान व्यक्त कर रहे हैं, और भीम सब सुन रहे हैं, तो वो भोजन करने के लिए उत्सुक हो रहा है, वो रहे है। अंत में भीम से रह नहीं गया, वो कृष्ण से कहते हैं तुम बचपन से ही जीव चटोरे हो, चोरी कर करके खाया, और यहाँ पर मुझको साथ में खिलाने से क्या हो जाएगा। लेकिन भगवान केवल उनको चिढ़ाने के लिए वो नहीं बैठा रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि कमी था भोजन का, उनके साथ बहुत मजाक करते थे। और अर्जुन तो गीता में साफ बोलते हैं कि मैंने आपका अपमान किया, मैं आपके साथ बैठता था खाने में पीने में, परिहास किया आपका, ये किया वो किया, उनको कोई संकोच नहीं हुआ कि कहे कि कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, जैसे कोई आदमी अपने ड्राइवर को आज्ञा दे ले चलो यहाँ पर और वो ठाट से बैठ, ऐसे अर्जुन आज्ञा देते हैं, इतना सौख्य है भगवान के साथ। और फिर ब्रज में तो कहना ही क्या। तो ये जो भक्त है ये इस रस के आश्रय हैं, कृष्ण विषय है। और वात्सल्य भक्ति रस विभाव आदेश वात्सल्यम स्थायी पुष्टि उपागत ऐसा वत्सल नामात्र प्रोक्तो भक्ति रसो बुधय। विद्वानों ने कहा है, रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि विभाव आदि के साथ जब वात्सल्य रति पुष्ट होती है तो वात्सल्य रस के रूप में भक्ति वात्सल्य रस बनता है विभाव आदि से युक्त होकर। तो इसमें इसे वात्सल्य भाव के विषयालंबन है भगवान श्री कृष्ण में, श्याम अंग रुचिर सर्वविध संलक्षण युक्त मृदु प्रिय वचन सरल सलज विनयी और मान्य मानकारी, बड़े लोगों का मान करने में प्रवीण श्री कृष्ण, ऐसे विषयालंबन है। श्याम शरीर सुंदर रुचिर और सर्व सुलक्षणों से युक्त, एक बच्चे को जैसा होना चाहिए जो अपने माता पिता के प्रति व्यवहार करना है तो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, मृदु बहुत कोमल, प्रिय वचन बोलने वाला, सरल और लज्जा से युक्त, विनयी और श्रद्धेय लोगों का आदर करने वाला, मान्य मानकारी एवं दाता, इन सब गुणों से युक्त श्री कृष्ण वात्सल्य भाव के विषयालंबन है। और माता पिता आदि जो भी गुरुजन हैं वे आश्रय आलंबन है, जैसे माता देवकी, वसुदेव जी, बलराम जी, अक्रूर जी, ये सब विषयालंबन है। और ब्रज में नंद महाराज, माँ जसोदा, उपनंद महाराज आदि, भांगुरी ऋषि और भी जितने भी बड़े लोग हैं सब इस रस के आश्रय। कौमार आदि वयस और उद्दीपन क्या है, श्री कृष्ण की कुमार आदि अवस्था, रूप वेश और सैसव चापल्य, बचपन में चपलता करना, अब जल पीत ऐसे भी कुछ बिना सोचे समझे बोलते रहना, और मंद हसित, ये सब उद्दीपन है, वात्सल्य रति के सब उद्दीपन है। और अनुभाव मस्तका घ्राण, श्री कृष्ण का मस्तक सूंघना, कर द्वारा अंग मार्जन, अपने हाथ से उनका मार्जन करना, अंग को धूल हटाना, सजाना, सेवा करना, आशीर्वाद आशीर्वाद देना, सुखी भव, चिरंजीवी भव, विद्यावान भव, ये आशीर्वाद दिया जाता है वत्सल भाव। आदेश और श्री कृष्ण को आदेश दिया जाता है, ये करो ये करो, यहाँ जाओ ये मत करो, आदेश, लालन दुलार प्रतिपालन और हितोपदेश दान आदि, और हितोपदेश कृष्ण को उपदेश करना, ये करो इसमें तुम्हारा हित है, ये करो ये मत करो, ये सब अनुभाव है वात्सल्य भक्ति रस में। इसमें अष्ट सात्विक विकार के अलावा एक और सात्विक विकार होता है माताओं में, खास करके स्तन्य श्राव। स्तंभ आदि जो अष्ट सात्विक विकार है अन्य भक्तों में होते हैं, पर वात्सल्य रस के भक्त में एक नौवां विकार होता है, सात्विक विकार, तो उसको कहते हैं स्तन्य श्राव। स्तन्य का अर्थ है स्तन का दूध चूता है कृष्ण को पिलाने के लिए शरीर में। अब बता रहे हैं मधुर भक्ति रस। मधुरा रति के कारण उसके उचित विभाव आदि के मिलने से मधुर जे भक्ति रस उत्पन्न होता है। आत्मोचितर विभाव आदि पुष्टि नीता सताम हृदय मधुराख्यो भवेद भक्ति रसौ रसो वसव मधुरा रति। अपने योग्य विभाव आदि से पुष्ट हो करके मधुर रति मधुर रस का रूप धारण करती है। विद्वानों ने इसको कहा है, इसको मधुरा रति कहते हैं। इसके विषयालंबन है श्री कृष्ण असमूर्ध सौंदर्य लीला एवं वैदग्ध आदि गुणों से विभूषित श्री कृष्ण श्याम सुंदर इसके विषयालंबन है। और समस्त प्रेयसी वर्ग आश्रयालंबन है, लक्ष्मी जी और द्वारका में महिषीगण और ब्रज में भगवान की प्रेयसी हैं गोपीजन, ये इसके आश्रय आलंबन है। और उद्दीपन विभाव क्या है, नव जलधर नवीन सांवले बादल को देखने से भाव बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति, मयूर पुच्छ मुरली ध्वनि आदि ये सब उद्दीपन है। इसमें अष्ट सात्विक विकार होते हैं और व्यभिचारी भाव में एक उग्रता और आलस्य को छोड़कर सब होते हैं। दो को हम आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, शांत दास सख्य वात्सल मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पंच प्रधान। शांत दास सख्य वात्सल मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पंच प्रधान। कृष्ण के प्रति जो भक्ति रस है आनंद है तो यही पांच रस प्रधान है। ऐसे तो अब बहुत से हैं दूसरे भी लेकिन प्रधान। अब गौड़ रति जो अप्रधान है उनको बता रहे हैं। वो आते हैं जाते हैं सब समय नहीं रहते, उनको गौड़ कहा गया है। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविध भक्ति गौड़ सप्त रस है। पंचविध भक्ति गौड़ सप्त रस है। पांच प्रकार की भक्ति में ये भक्ति प्रधान है, शांत रति दास रति सख्य रति वात्सल्य रति और मधुरा रति, ये तो प्रधान है। लेकिन सात गौड़ है, गौड़ का अर्थ होता है अप्रधान, और उसकी परिभाषा दी है हास अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय। तो ये रति ऐसे है हास्य रति और विस्मय रति अद्भुत और वीर रस। हास्य रति विस्मय रति और उत्साह रति और शोक रति क्रोध रति जुगुप्सा रति और भय रति, तो एक किस तरह से विभाव आदि के साथ मिलकर के रस बनते हैं। हास्य रति हास्य भक्ति रस बनता है, विस्मय रति अद्भुत भक्ति रस, उत्साह रति वीर भक्ति रस, शोक रति करुण भक्ति रस, क्रोध रति रौद्र भक्ति रस, जुगुप्सा रति विभत्स भक्ति रस और भय रति भयानक भक्ति रस। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गिना रहे हैं। अब इनका विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं। तो यहां सब मैं जो चैतन्य चैतन्य रखा हूं सब दिया गया है उसमें, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पंच रस अस्थाई व्यापी रहे भक्त मन, ये पांच रस जो है ये तो अस्थाई है, ये भक्त के मन में व्याप्त रहते हैं हमेशा, लेकिन सप्त गौड़ आगंतुक पाइए कारण। लेकिन जो सात रस गिनाए गए ये सात रस में, जैसे भास भक्ति रस, अद्भुत भक्ति रस, वीर भक्ति रस, करुण भक्ति रस, रौद भक्ति रस, विभत्स भक्ति रस और भयानक भक्ति रस, ये गौड़ हैं और ये समय पा करके आते हैं, आगंतुक हैं, बाकी तिरोहित रहते हैं। पाइए कारण है, किसी कारण से विभाव आदि से, मतलब भगवान श्री कृष्ण के लीला आदि से या व्यवहार से जैसे तैसे ये आते हैं, भक्ति रस ही इस तरह से बनकर साथ। तो अब बता रहे कौन कौन किस रस के भक्त है, थोड़ा हिंट बता रहे चैतन्य महाप्रभु। शांत भक्त नव जोगेंद्र सनकादियार दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। शांत भाव के भक्त हैं मुख्य रूप से नव जोगेंद्र, कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्रोथ दुमिलो चमसह कर भाजन, ये नव जोगेंद्र जिनकी कथा एकादश स्कंध में है। और सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार ये कौन है सनातन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, कुमार तो उनमें भी लगाते हैं लेकिन एक सनत जी है, सब में सन शब्द लगा हुआ है, सनत सनत। एक बार मैं कथा कह रहा था तो एक भक्त कहा बॉम्बे में, तो महाराज जी ब्रह्मा जी के सन है इसीलिए सन शब्द लगाया गया अच्छा मैं सोचने लगा अच्छा सोच रहा है तो और लोग दूसरे के सन है तो उनमें क्यों नहीं सन लगाया हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत 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 में कुमार शब्द लगा तो सनत कुमार, ये शांत रति के भक्त हैं। और दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक का अपार, और दास्य भाव के कौन कौन भक्त हैं, जितने भी भगवान के सेवक हैं सारे ब्रह्मांड में वैकुंठ में भी फैले हुए अपार, ये सब दास्य भाव के भक्त।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।
सख्य भक्त श्रीदामादि, और सख्य रस के कौन भक्त हैं, ब्रज में श्रीदाम आदि सुबल अर्जुन तेजस्विन वरुणतप इत्यादि विशाल ऋषभ ये सब सख्य रस के भक्त हैं। और पूरे भीम अर्जुन, और पूरी में द्वारका में या हस्तिनापुर में भीम और अर्जुन ये सख्य रस के भक्त, और द्वारका में भी सख्य रस के भक्त है, मथुरा में हस्तिनापुर में और ब्रज में। वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन, और वात्सल्य रस के कौन भक्त हैं, माता पिता और जितने भी उम्र में या संबंध में बड़े लोग हैं कृष्ण के, ये सब वात्सल्य रस के भक्त सब ये भी बहुत हैं। मधुर रसे भक्त मुख्य ब्रजे गोपीगण, मधुर रस में जो सबसे मुख्य भक्त हैं वे हैं ब्रज में गोपीगण, और वैसे तो महिषीगण लक्ष्मीगण असंख्य गण, और भगवान की 16,000 पटरानियां महिषीगण और अनंत कोटि लक्ष्मीगण वैकुंठ में, और ब्रज में गोपीगण, और गोलोक वृंदावन में नित्य धाम में भी असंख्य असंख्य अगणम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असंख्य अंगणम, गिना जाए तो असंख्य होंगे मान गिना नहीं जा सकता है, असंख्य गणन इस तरह भगवान की प्रेसियां हैं। तो ये सारा जगत और पूरा बैकुंठ गोलोक भगवान के इन भक्तों से भरा हुआ है और भगवान इस प्रकार से भक्ति रस का आस्वादन करते हैं और भक्त उन्हीं रसों का आस्वादन करते रहते हैं। पुनः कृष्ण रति है द्वैत प्रकार, अब फिर से कह रहे कृष्ण रति ये दो प्रकार की होती है, कृष्ण में अनुरक्ति प्रेम दो प्रकार का होता है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवला भेद आप। एक रति होती है कृष्ण में जो ऐश्वर्य भाव से मिश्रित होती है, कृष्ण महान है प्रभु है ये है वो, प्रेयसियों में भी जैसे रुक्मिणी आदि में एक ऐश्वर्य मिश्रा भाव है, मिश्र भाव है, और एक है केवला, केवला मतलब केवल माधुर्य भाव, कृष्ण के प्रति अपना संबंध देखना, उसमें ऐश्वर्य भाव नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है या हमसे बड़े हैं ये सब। तो दो प्रकार का प्रेम हुआ है, इस सबके प्रेम में से भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। दो भेद है प्रेम का, रति के दो भेद है, एक ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति और एक केवला रति, केवल मतलब खांटी, केवल केवल का मतलब है ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भाव, केवल भाव, केवला रति और ऐश्वर्य मिश्रा रति। तो केवला का मतलब हुआ कि ऐश्वर्य छान दिए खत्म हो गया तो केवला हो गई केवला शुद्ध माधुर्य में प्रेम है। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, गोकुल में ब्रजमंडल में केवला रति है ऐश्वर्य ज्ञानहीन, ऐश्वर्य ज्ञान किसी को नहीं है, कृष्ण ईश्वर हैं परमात्मा हैं परब्रह्म हैं बड़े हैं नहीं, इस प्रकार की रति नहीं, ऐश्वर्य ज्ञानहीन रति है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा प्रियतम है, बस यही भाव है शुद्ध भाव। ये ईश्वर भाव को यहां पर केवला भाव में मिश्रण बताया जा रहा है, उसे स्वाद बढ़ता नहीं है घट जाता है ऐश्वर्य भाव होने से, कृष्ण ईश्वर है ऐसा भाव। तो गोकुल केवला रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पूरी द्वये वैकुंठादे ऐश्वर्य प्रवीण, और पूरी द्वये में मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य मिश्रा रति है कृष्ण में, रति है गाढ़ रति है लेकिन ऐश्वर्य से भी मिश्र है, और वैकुंठादे वैकुंठ आदि में आदि शब्द से तत्पर है हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र इत्यादि या और कहीं भी स्थान और जो भी बाकी ब्रज को छोड़ करके सब जगह ऐश्वर्य मिश्रा रति है कृष्ण में। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति, देखिया न माने ऐश्वर्य केवल रीति, तो ऐश्वर्य ज्ञान में प्रीति संकुचित हो जाती है, कृष्ण के प्रति जो छलकता हुआ प्यार है स्नेह है वो कम हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण तो भगवान है महान है, तो उनके प्रति जो अपना भाव रहता है थोड़ी देर के लिए संकुचित हो जाता है ऐश्वर्य का अनुसंधान कर, लेकिन देखिया न माने ऐश्वर्य केवला रीति, लेकिन केवला की क्या रीति है, केवला का क्या स्वरूप है कि कृष्ण का ऐश्वर्य देख करके भी वो रति नहीं मानती है कि भगवान है, देख करके भी शांत दास रसे ऐश्वर्य कहां उद्दीपन वात्सल्य सख मधुरे तो करे संकोचन। शांत और दास रस में ऐश्वर्य भाव को और उद्दीप्त करता है भगवान के प्रति, और प्रेम बढ़ता है ऐश्वर्य देह करके, लेकिन वात्सल्य और सौख्य और मधुर इन तीन भावों को ऐश्वर्य संकुचित कर देता है दबा देता है। दो भाव को तो बढ़ाता है ऐश्वर्य और तीन भावों को संकुचित कर देता है। किस तरह से संकुचित करता है भाव? देवकी वसुदेव देवकी कृष्ण चरण बंदी ल ऐश्वर्य ज्ञाने दुहारे मने भय है ल मने भय है ल। जब श्री कृष्ण और श्री बलराम ब्रज से मथुरा गए और कंस का वध किए, विविध लीला किए, पहलवानों को मारे, धनुष तोड़े, कुबलया पेड़ का वध किए और ब्रज में भी और बहुत सी लीलाएं किए, तो इसको देवकी और वसुदेव सुने थे, कुछ देखे थे, तो उनको पूरा पूरा मन में हो गया कि हमारे पुत्र बने हुए हैं लेकिन ये साक्षात भगवान है। तो जब कृष्ण बलराम 11 वर्ष के बाद जा करके कारागृह से उनको खोले अपने माता पिता को, चरण वंदना किए दोनों भाई। चरण वंदना करने के बाद वसुदेव जी और देवकी जी कोई आशीर्वाद नहीं दिए और आलिंगन करने के बाद तो दूर रही, आशीर्वाद भी नहीं दिए। इतने पर तो अखबार में भर लेना चाहिए था, बेटा बेटा कहकर 11 वर्ष के विरह के बाद बेटा मिला है। फिर भी इतना ऐश्वर्य मन में उदित हो रहा था कि उस प्रीति को दबा दिया, वो आलिंगन नहीं कर पाए कृष्ण का, मुख नहीं चूमे, आशीर्वाद नहीं दिए, कुछ नहीं। भय मन में हो गया कि पहले तो ये अपने को अपराधी मानने लगे कि भगवान प्रणाम कर रहे हैं हमको, वो हक्का वक्का हो गए थे माता पिता, भगवान प्रणाम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शांत दास्य रस में ऐश्वर्य उद्दीपन का काम करता है, लेकिन वात्सल्य सख्य मधुर में वो दबा देता है, संकुचित करता है प्रेम को। तो यहां वात्सल्य का उदाहरण दिया जा रहा है, किस तरह से वात्सल्य को ऐश्वर्य ज्ञान शिथिल कर दिया। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण बंदिला ऐश्वर्य ज्ञाने दुहारे मने भय हैला। देवकी वसुदेवश्च विज्ञा या जगदीश्वर कृतसम वंदन पुत्र सस्व जाते न संकित। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोले हैं, उसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। देवकी और वसुदेव ये जान गए कि उनके पुत्र जगदीश्वर हैं दोनों, तो वो लोग जब दोनों प्रणाम किए तो उनका आलिंगन नहीं किए वसुदेव देवकी। इस तरह उनके वात्सल्य भाव को ऐश्वर्य ज्ञान दबा दिया। कृष्ण भी स्वरूप देखी अर्जुनेर हैल भय, सख्य भावे धार्ष क्षमा कर या विनय। अब देखिए किस तरह सख्य को दबा देता है ऐश्वर्य ज्ञान। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय, तो उसको देख करके अर्जुन को भय हो गया, थर थर कांपने लगे। ये भगवद गीता के एकादश अध्याय में वर्णन है, किस तरह से कांप रहे हैं, अपनी स्थिति को कह रहे हैं, मैं तो कोई दिशा नहीं समझ रहा हूं, दिशो न जाने न लभे च शर्म, मुझे कोई शांति नहीं है, अरे बाप रे मैं कहां खड़ा हूं, क्या हो गया है, कहीं हमको मत खा जाइए आप, ऐसे कह रहे हैं भय से। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आगे से पीछे से चारों तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप ब्रह्मा जी के पिता हैं, पिता से लोक से चरा चर से आप सबके पिता हैं, चल अचर के ब्रह्मा जी आपसे पैदा हो रहे हैं, आपके नाभि से भगवान ने दिखाया कि किस तरह नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह रुद्र उत्पन्न हो रहे हैं और किस प्रकार सारे लोग भगवान के मुख में समा जा रहे हैं, सृष्टि उनसे निकल रही है, सब जन्म मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं इस तरह से भगवान दिखा रहे थे। तो अर्जुन को भय हो गया, उनको ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ खड़ा हूं, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, हस्तिनापुर किधर है, क्या है, कुछ भी नहीं। भय के मारे कांपने लगे कि ये खा जाएगा ये विकराल पुरुष। तो पूछते हैं आख्या ही में को भवानुग्र रूप, आख्या ही में आप हमको बताइए कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन है, कौन है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं ही करता हूं। भगवान उसी पोज में बोले, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृत्त, मैं काल हूं और लोगों का संहार करने पर प्रवृत्त हुआ हूं। रीते त्वाम भविष्य, तुम्हारे बिना भी अभी लोग बचेंगे नहीं, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये बचेंगे नहीं। देख रहे हो किस तरह मैं मार रहा हूं, दांत में चबा रहा हूं। कुरुक्षेत्र में जुटे उन बड़े बड़े वीरों को खड़े दांत के भीतर भगवान चबा रहे थे। इतना बड़ा बड़ा दांत, इतना बड़ा मुख था। सबको, जयद्रथ को, भीष्म पितामह को, किसी को भी वो चबा रहे। अर्जुन तो ये देख करके एकदम होश गवा दिए, बाप रे बाप। अब वो यही इसी फेर में पड़ गए कि हमारी जान किसी तरह से बच जाए, हमारी जान किसी, तो प्रार्थना करने लगे। अब कौन है, कौन है, कौन है? और ये तो विश्वास हो रहा था कि ये कृष्ण है, तो प्रार्थना की आप उसी रूप में हो जाइए, आप उसी रूप में हो जाइए। हो गया, देखना हो गया, और रो रो करके क्षमा मांग रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेति, मैं प्रेम के कारण, सखे के कारण मैं आपको कभी कभी हे कृष्ण, हे जादव और हे सखा कह दिया। कहां मेरा पोजीशन और आपका कितना महान, और मैं सखा कहा, मैं जादव कहा, मैं कृष्ण कहा। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपके इस महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादत प्रणेन वापी, चाहे भूल से या प्रेम से जैसे भी मैं आपका अपमान किया, कहा जच्चाव हासार्थ मसत कृतों से, आपकी हंसी उड़ाया, मैं आप मजाक किया और आपका परिहास किया, मेरे द्वारा आप असत्कृत हुए, आपका असत्कार किया। बिहार सज्जा सन भोजनेशु, चाहे बिहार करते समय, घूमते समय या सोते समय, बैठते समय या भोजन करते समय, कई बार मैं आपको बहुत गलत बोला हूं। एको थवाप्यच्युत समक्षम, वास्तव में आप तो एक हैं। एक का अर्थ है कि आप अद्वितीय हैं। हमने जो भी आपका अपराध किया है, हे अच्युत, आप हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब कभी आपको सखा नहीं कहूंगा, अब कभी आपको जादव नहीं कहूंगा। जादव मतलब मनुष्य कहना है, और कृष्ण कभी नहीं आपको कहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत गलती किया कि आपका अपमान किया, आपसे रथ हंकवाया, कि कहां महान ब्रह्मा के भी पूज्य, और आप हमारा रथ हाँक रहे हैं। लेकिन जब विश्वरूप संवरण किया भगवान ने, तो फिर रथ हाँकवाने लगे। हो गया। तो इस तरह से ऐश्वर्य ज्ञान जो है, सख्य भाव के भक्त के भाव को संकुचित करता है। कृष्ण यदि रुक्मिणी र कैल परिहास, कृष्ण छाड़ी बेन जानी रुक्मिणी रहल त्रास। मधुर भाव को किस तरह से दबाता है ऐश्वर्य ज्ञान। रुक्मिणी जी में ऐश्वर्य ज्ञान आ गया भगवान की लीला सुनते सुनते। तो एक बार भगवान रुक्मिणी जी से मजाक किए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण यदि रुक्मिणी वे कैल परिहास, परिहास किए। क्या परिहास किए? उसमें रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रहे थे, रात्रि का समय था, चंद्रमा की किरणें आ रही थी। अपने प्रिया के इस प्रेम भाव को देखकर भगवान द्रवित हो गए। कई दासियां घर में थी, लेकिन रुक्मिणी जी स्वयं ही चामर डुला रहे थे, पंखा झल रही थी भगवान को खड़ा होकर। तो इस प्रेम से भगवान बहुत प्रभावित हुए, लेकिन परिहास किए, मजाक किए। प्रिय रुक्मिणी, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, लेकिन नहीं कह पाया तुमसे। मैं यही कहना चाहता था कि देखो, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरा कहीं राज्य नहीं है। राज्य क्या, मथुरा में जो अपने बाप का घर था, वो भी मैं डर करके छोड़कर भाग आया, अपनी जन्मभूमि छोड़ दिया जरासंध के भय से। तुमको तो मालूम है ना, अपने जन्मभूमि छूट गई, कुछ भी छूट गया, जमीन कहीं नहीं है मेरा, राज्य का तो प्रश्न ही नहीं। तो समुद्र में आकर के घर बनाकर गुजारा कर रहा हूं, कहीं जमीन नहीं मिला मुझे। तो एक तो मेरे पास धन नहीं है, और पत्नी को तो धन की जरूरत होती है ना, ऐसे भिखमंगा के साथ कितना दिन स्त्री गुजारा करेगी। भगवान ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं। और दूसरा दुर्गुण मुझ में क्या है कि मेरा बहुत बलवान बलवान राजाओं से बैर है, तो कोई ठीक नहीं है किस दिन मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना, तुम विधवा हो सकती हो। ऐसे आदमी से विवाह किया जिसका दुनिया से झगड़ा चल रहा है, जरासंध आदि राजा मुझे मारने की सोचते रहते हैं, भगवान इस तरह परिहास कर रहे। और हमसे जानते हो कौन प्रेम करते हैं, जितने भी अकिंचन मंगा लोग हैं, घर द्वार कोई किसी का नहीं है, यही लोग हमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, मेरा स्वभाव यह है कि मैं कभी स्त्री से प्रेम नहीं करता, ये मेरा स्वभाव। तो मान लीजिए रुक्मिणी जी अगर कहें तब विवाह क्यों किए, कहते हैं असल में ये शिशुपाल आदि मुझसे बहुत द्वेष करते थे, इसलिए मैं विवाह करने के लिए वहां नहीं गया था, मैं तो उनसे झगड़ा करने गया था। मुझे सह नहीं हो रहा था कि ये लोग हमसे द्वेष करें, तो उनकी शान तोड़ने के लिए गया था, विवाह के लिए नहीं गया था। लेकिन उनकी शान तभी टूटती जब तुमको मैं लेकर के आता, इसीलिए तुमको लेकर के आता। तो एक काम करो, तुमको अभी भी मैं अवसर देता हूं, तुम किसी राजा को, किसी राजकुमार को जो सुशील है, धनी है, जिसके जीवन का ठिकाना है, अस्थिर है सब तरह से, उसको तुम अपना पति चुन लो। तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, और विवाह में खर्च होगा तो मैं भी कुछ कर दूंगा, तुम्हारा विवाह करा दूंगा। देखो अपना भूत भविष्य सब देख लो आगे का, हमारे साथ तो रहने में कोई दुख ही दुख है, न धन है न कुछ है, और सब लोग हमसे बैर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और हमारा अपना भी स्वभाव है कि स्त्री आदि हमको पसंद नहीं। मैं भी उन्हीं लोगों से प्रेम करता हूं जो भिखमंगे हैं, अकिंचन हैं, मेरा भी स्वभाव ऐसा। तो तुम्हें किसी दूसरे राजकुमार से विवाह कर लो तुम्हारे चॉइस के अनुसार, और मैं इसके लिए छुट्टी देता हूं, मैं हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी थर थर कांपने लगे और उनके हाथ से पंखा छूट गया, गिर गया, और इसके बाद वो धड़ाम से फर्श पर गिर गए बेहोश होकर। अब ये भावना हो गई कि प्रियतम हमें छोड़ देंगे, ये हमको छोड़ना चाहते हैं, इस विचार आते ही वो गिर गई, मूर्छित हो गई, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य ज्ञान आ गया था कि ये तो महान है, प्रभु है, मैं तो एक जीव हूं, दासी हूं इनकी। और जब ज्यों ही वो गिरी ते ही भगवान उठा करके चार भुजा से, दो भुजा तुरंत आविष्कृत कर लिए, चार भुजा से उठा करके गोद में बैठा करके पलंग पर केस सवारने लगे, आंसू पोछने लगे, स्तन पोछने लगे, पानी का छींटा देने लगे। वो तो बेहोश हो गए थे, दांत लग गए थे, जब होश में आई और स्वस्थ हुई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओ इतना तुम भोली भाली हो, मैं तो मजाक कर रहा था और उसी को तुमने सच्चा मान लिया। हमारे भाग्य में स्त्री से ये भी सुख नहीं लिखा है। अरे आदमी किससे मजाक करेगा, अपनी पत्नी से ही करेगा ना। तुमको इतना समझना चाहिए कि मैं मजाक कर रहा था, मैं वसुदेव जी की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं मजाक कर रहा था। तुम चिंता में पड़ गए, कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे सेवा को समझता हूं, अभी तुमने मुझको देखा नहीं था, उसी समय तुमने पत्र द्वारा आत्मसमर्पण किया था, और ये भी तुमने लिखा था कि यदि मेरे साथ विवाह नहीं होगा तो मैं यह आत्महत्या करूंगी, तो प्रिय तुम्हारे भाव का मैं सदा ऋणी हूं, जन्म जन्म जुग जुग तक मैं कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। इस तरह से जब भगवान कहे तो रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। फिर भगवान के वाक्यों की वो व्याख्या करने लगी कि आप ठीक कह रहे थे कि आप भिखमंगों से प्रेम करते हैं, मतलब आप आत्माराम मुनियों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, और आपको स्त्री की क्या जरूरत है, लक्ष्मी जी तो साथ में रहती हैं लेकिन उनकी भी आप उपेक्षा करते हैं, पर आप भले स्त्री में मन लगावे या न लगावे, हमारी यही प्रार्थना है कि मेरा मन आप में लगा रहे हमेशा, मेरे आपसे प्रेम रहे। बहुत सुंदर व्याख्या की है। बाद में भगवान कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, ये गृहस्थ जीवन जो है ये बहुत ही जाल का जीवन है, इसमें दुख ही दुख है, एक ही सुख इसमें है। भगवान कहते हैं भागवत में कि अपनी प्रिया के साथ कभी एकांत में बैठ करके हंसी मजाक किया जाए और दो चार मिनट या घंटा बिताया जाए, बस यही सुख है, बाकी सब दुख धंधा है। अपनी पत्नी के साथ बैठ करके थोड़े देर आनंद से बातें किया जाए, हंसी मजाक किया जाए, तो उतने देर तक संसार के दुख की विस्मृति हो जाती है। लेकिन मैं तो वो भी सुख नहीं पा पाया। मैं सोचता था कि जब मैं ऐसा कहूंगा तो तुम अपने दांतों से अपना ओठ दबा लोगी और भौहें तिरछी करके क्रोध से कहोगी कि ऐसा बोलोगे ठीक नहीं होगा, तुम मान कर जाओगे, मैं तो ये सोचता था। लेकिन तुम तो ऐसे गौ की तरह गिर पड़ी। भगवान कहते तो भगवान के इस साध की पूर्ति श्रीमती राधा रानी से होती है, वैसा सुनने पर तो वो तुरंत मान कर जाती है, फिर भगवान को पैर पर गिर कर मनाना पड़ता है। रुक्मिणी जी दक्षिण नायिका है, अनुकूल भाव से भजती है क्योंकि इनमें ऐश्वर्य ज्ञान है, कृष्ण महान है, बड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सौख्य वात्सल्य और मधुर रस को ऐश्वर्य ज्ञान शिथिल करता है। तो तीन उदाहरण दिए, देवकी वसुदेव का वात्सल्य रस का, अर्जुन का सौख्य रस का, और रुक्मिणी जी का मधुर रस का उदाहरण दिए। तस्याः सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धे हस्ताच्छलद बलयतो व्यजनम पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायु विहता प्रविकीर्जकेशान। किस तरह से रुक्मिणी जी गिरी थी उसका वर्णन इस श्लोक में है। केवल आर शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न माने, ऐश्वर्य देखिले वो निज संबंध से जान से मान से माने। केवला की क्या रीति है, ऐश्वर्य अगर देखता भी है भक्त तो वो ऐश्वर्य पर कुछ भी विचार नहीं करता, केवल अपना संबंध देखता है, कृष्ण मेरा ये है, कुछ भी दिखावे, कुछ भी नाटक करे। जैसे माँ जसोदा को विश्व रूप दिखाया भगवान ने अपने मुख में, एक बार नहीं दो बार दिखाया, एक तो माटी उगलवाते समय दिखाया और दूसरा एक बार जम्हाई ले रहे थे श्री कृष्ण, तो माँ जसोदा दूध पिला करके ऐसे देख रहे थे मुख को, जम्हाई लिए तो उसके भीतर सारा ब्रह्मांड था, और माटी उगलवा रहे थे उस समय सारा ब्रह्मांड सब कुछ, उसको देख करके भी माँ जसोदा कृष्ण को भगवान या ईश्वर नहीं मानी, देख ली साक्षात, लेकिन वो समझने लगे कि ये मेरा बुद्धि भ्रम है, ये किसी की माया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी ये तो मेरा बेटा है, यही भाव हुआ। त्रैया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगश्च सात्वतः उपगीयमान महात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्। त्रैया वेद जिनकी कीर्ति को गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, सांख्य और योग इनका अनुष्ठान करने वाले बड़े बड़े योगी और ज्ञानी जिनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्तों के द्वारा जो सम्मानित हैं ईश्वर के रूप में, इस प्रकार जिनकी महिमा का गान किया जाता है, ऐसे प्रभु को सा यशोदा आत्मजम अमन्यत, अपना पुत्र ही मानती रहे, कभी भगवान नहीं मानती। यह है शुद्ध केवला की रीति, केवल भक्ति की, ऐश्वर्य देखने पर भी वो ऐश्वर्य को नहीं मानते। तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिकोलु खले दामना बबंध प्राकृतम जथा। इस प्रकार गोपी जसोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र मान करके उखल में बांध दिया। उसमें ऐश्वर्य दिखा रहे थे, रस्सी पूरी नहीं हो रही थी, ऐश्वर्य भगवान का प्रकाशित हो रहा था। देख करके माँ जसोदा कुछ चकित हुई, लेकिन फिर भी पुत्र मानकर बांध ही दिया। तो शुद्ध भक्त एक केवला भक्ति जो है, केवल स्नेहमय भक्ति, तो वह ऐश्वर्य से दबती नहीं है। तो माँ जसोदा का उदाहरण दिया गया। अब सख्य रस का उदाहरण दे रहे हैं। सखा भी भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं ब्रज में, लेकिन वो ईश्वर कभी नहीं माने। वाह कृष्ण भगवान श्री दामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुखं रोहिणी सुतम। भगवान कृष्ण श्री दाम को ढो रहे थे, घोड़ा बने हुए थे कृष्ण, इनके ऐश्वर्य को देख करके भी श्रीदाम इनको कभी भगवान नहीं माने। जो कि सामने किसी असुर का वध कर रहे हैं, प्रलम्बासुर को मार रहे हैं, अघासुर को, कालिये को, क्या क्या सब देखते हैं, फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपना सखा मानते। तो एक बार खेल चल रहा था बाह्य वाहक का, तो कृष्ण श्रीदाम को लेकर के चले और भद्रसेन वृषभ को और प्रलम्बासुर बलराम जी को लेकर के चला था। उदाहरण दे रहे। अब मधुरा रति का उदाहरण सुनिए कि प्रिया ब्रज में कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर भी नहीं जान पाती है, मानती ही नहीं है, वो अपना प्रियतम ही मानती है। साच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। वह गोपी राधा नाम की अपने को सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ मान रही थी, क्योंकि उसका यह भाव था कि समस्त गोपियों को छोड़कर प्रियतम मुझसे प्रेम कर रहे हैं। ततो गत्वा वनोदेशम, एक वन के प्रदेश में जाकर के वो दृप्त होकर के गर्भीली होकर के और केशव से बोली, मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं सुकुमार हूँ, आपको जहां चलना है मुझे लेकर के चलिए, मैं नहीं चल सकती हूं पैदल, थक गई हूं। इस प्रकार की बात कहना, ऐश्वर्य सामने भी आ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं प्रभाव। इस प्रकार से कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अस्कंधे आरोहता मिति, मेरे कंधे पर चल जाओ, और इसके बाद अंतरहित हो गए। गोपी गीत में गोपियां कहती है, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंग त्युतागता गति विदस तवोपगीत मोहिता कितव जोषित कष्ट जन्य। भगवान को कितव कह रही है, धूर्त कपटी, कहां ऐश्वर्य रहा, ऐश्वर्य कभी इनके भाव को दबा नहीं पाए। शांतरा से स्वरूप बुद्धे कृष्ण क निष्ठता समो मन निष्ठता बुद्धे इति श्रीमुख गाथा। अब ये बात कह करके फिर बता रहे हैं कि किस किस रति के भक्त में कौन कौन भाव प्रधान रहता है, निष्ठा क्या होती। शांत रस स्वरूप बुद्धि कृष्णैक निष्ठता, कृष्णैक निष्ठा, ये शांत रति के भक्त में होती है। और यह भाव बाद के सभी भक्तों में होता है, दास्य भाव में भी होता है, सख्य भाव में, वत्सल भाव में और मधुर भाव में भी, ये गुण सब में रहता है। सम मन निष्ठता बुद्धि इति श्रीमुख गाथा, एकादश स्कंध में भगवान ने स्वयं ही उद्धव जी से कहा है कि मुझ में बुद्धि की जो अविचल स्थिति है इसको सम कहा गया है। तो शांत रस के भक्त की बुद्धि अविचल भगवान में रहती है। समो मन निष्ठता बुद्धे इति श्री भगवद वचः तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धे रेताम शांत रतिम बिना। तो इस शांत रति के बिना इस प्रकार के कृष्ण में निष्ठा दुर्लभ। कृष्ण बिना तृष्णा त्याग तार कार्य मानी, इसका कार्य क्या है, इसका परिणाम शांत रति का, कृष्ण बिना तृष्णा त्याग। कृष्ण के को छोड़, कृष्ण में तृष्णा रहती है, कृष्ण के अलावा और कोई तृष्णा नहीं, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जान। इस तरह से इस कोटि के भक्त को शांत भक्त कहा जाता है। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, ये शांत रस के भक्ति भक्त को कहा जा रहा है। और की तो बात बहुत आगे है। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग संतिर दुई गुणे। तो स्वर्ग मोक्ष को कृष्ण भक्त नरक समझता है। जब स्वर्ग को नरक समझता है तो इस पृथ्वी पर विविध देशों को क्या समझेगा। तो नरक का भी नरक है, नरक में रहने वाले लोग भी उसको नरक समझते होंगे, इन सब स्थितियों को, देशों को। यह शांत भक्त की निष्ठा। नारायण पर सर्वे कुतश्चन विभ्यति, नारायण पर सर्वे कुतश्चन विभ्यति, स्वर्गापवर्ग स्वर्गापवर्ग नर के स्वपित तुल्यार्थ दर्शिन। नारायण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं और कहीं भी दुख नहीं मानते। उनके दृष्टि से स्वर्ग नरक अपवर्ग में ये कहीं दृष्टि रहती है। वो स्वर्ग में न स्वर्ग देखते हैं, न नरक में नरक, न मुक्ति में मुक्ति, सब जगह केवल कृष्ण को देखते हैं, मतलब कृष्ण को पसंद करते हैं। उनकी दृष्टि में मुक्ति स्वर्ग आदि सब एक समान है, नरक जैसा। यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जने आकाश र शब्द गुण जैन भूत गढ़े। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग, कृष्ण में अविचल स्थिति मन की और अन्य सब वस्तुओं से तृष्णा त्याग, स्वर्ग से मोक्ष से सबसे। तो ये जो दो गुण हैं, अन्य सबका त्याग और कृष्ण में निष्ठा, यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जने आकाश से शब्द गुण जैन भूत गणे। जैसे आकाश एक भूत है, पंच महाभूत है, तो उसका गुण है शब्द। तो आकाश का गुण है वायु में भी रहता है और अग्नि में, जल में और पृथ्वी में। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे आकाश से यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जाने आकाश से शब्द गुण जैन भूत गण है। और शांतेर स्वभाव कृष्ण ममता गंधहीन, पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। शांत भक्त का जो भाव है कृष्ण में वो ममता गंध से शून्य है, परंतु उनके ऐश्वर्य आदि पर लुब्ध है, उनके आनंदमयता पर लुब्ध है। पर ब्रह्म है, परमात्मा है, इसी ज्ञान की प्रधानता रहती है। इसी भाव केवल स्वरूप ज्ञान रूप शांत रस है, पूर्ण स्वर्ग प्रभु ज्ञान अधिक है दास। भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अपने रूप स्वरूप का ज्ञान शांत रस में ये रहता है उजागर, और दास रस में भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य और प्रभुत्व का ज्ञान हो ज्यादा रहता है, ये बढ़ जाता है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और सबके स्वामी हैं, प्रत्येक जीव उनका दास है और सेवा करना दास जीव का कर्तव्य है। यह भाव दास से रति में प्रदीप्त रहता है। पूर्णेश्वर प्रभु ज्ञान अधिक है दास से, ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख दिन निरंतर। दास्य भाव में एक ज्ञान रहता है भगवान ईश्वर है, कंट्रोलर है, और संभ्रम गौरव, संकोच और गौरव का भाव भगवान के प्रति, बड़े हैं हम छोटे हैं, ये रहता है। सेवा करके कृष्ण को सुख देने की भावना निरंतर बनी रहती है दास्य भाव में। शांतिर गुण दास्य आचे अधिक सेवन, शांत का गुण तो रहता है दास्य भाव में, कृष्ण निष्ठा, परंतु दास्य में एक अधिक रहता है, क्या? सेवन, सेवा की प्रवृत्ति होती है भगवान की, दास्य में ये रहता है। अतएव दास रसर यही दुई गुण है, अतः दास्य रति में दो गुण हो जाते हैं, एक तो शांत रति की निष्ठा और दूसरा सेवन। तो ये दो गुण दास्य में होते हैं, शांतिर गुण दास्यर सेवन, सख्य दुई है। और सख्य रति में क्या होता है कि शांत का की निष्ठा और दास्य का सेवन, सेवन भाव सेवा, ये सख्य में दोनों रहते हैं, और सख्य में एक बढ़ जाता है, संभ्रम गौरव विश्वास, विश्वास से अब हो जाता है एकदम अभेद ज्ञान, बराबरी का जो संबंध होता है विश्वास सहज सक, ये बढ़ जाता है। कांधे चढ़े कांधे चढ़ा है, करे क्रीड़ा रण, कृष्णे सेवे कृष्णे कराइया आपन सेवन। सख्य रस में भक्त क्या करता है, कांधे चढ़े कृष्ण के कंधा पर चढ़ता है, और कांधे चढ़ा है और कृष्ण को भी चढ़ाता है, कभी कभी कृष्ण के भी कंधे पर चढ़ता है सख्य रस में, और कभी कभी कृष्ण को चढ़ाता है। करे क्रीड़ा रण, कभी मल्ल युद्ध करता है, कंपटीशन लेता है खेल में कृष्ण से। कृष्णे सेवे, कृष्ण की कभी सेवा करता है, और कृष्णे कराए आपन सेवन, और कृष्ण से अपना चरण दबवाता है और अपनी सेवा कराता है, पंखा झलवाता है। ये सख्य रस में ये सब होता है, विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास प्रधान सख्य, गौरव संशयहीन, गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रस तीन गुण चिन्ह। तो शांत की निष्ठा, दास्य का सेवन और सख्य का अपना गुण विश्वास। यह विश्वास का अर्थ फेथ नहीं हुआ है, विश्वास शब्द संस्कृत में है, दृढ़ प्रेम ही कहिए उसको, अपनापन का भाव। तो विश्रम्भ प्रधान सख, गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रस तीन गुण चिन्ह। तो सख्य रस के ये तीन चिन्ह है, विश्रम्भ प्रधान सख, गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रस तीन गुण चिन्ह, वो शांत दास और सख के मिलाकर। ममता अधिक कृष्ण, आत्म सम ज्ञान, अतएव सख्य रस बस भगवान। तो सख्य रस की विशेषता बता रहे चैतन्य महाप्रभु, इसमें ममता अधिक होती है, कृष्ण मेरा है, और कृष्ण में आत्म सम ज्ञान, हम और कृष्ण दोनों एक समान है, ये ज्ञान रहता है। अतएव सख्य रस बस भगवान, इसीलिए सख्य रस के बस में भगवान रहते हैं, ये तीनों में बस में रहते हैं, सख्य रस में, वात्सल्य रस में और मधुर रस में, भक्त के भाव के बस में रहते हैं। तो यहां से बस बसता चालू हुई। ममता अधिक कृष्ण आत्म सम ज्ञान, अतएव सख्य रस बस भगवान, सख्य रस के बस में भगवान रहते। अब वात्सल्य का सुनिए, वात्सल्य शांतेर गुण, दास्यर सेवन, सेई सेई सेवनेर यह नाम पालन। वात्सल्य में क्या होता है, ममता तो रहती ही है खूब बढ़ी हुई, और शांत का गुण भी रहता है निष्ठा, और दास्य का सेवन भी, इसलिए यह रस बहुत ही बढ़ा चढ़ा है वात्सल्य भाव। सखेर गुण असंकोच, अगर अवसार, ममता धिक के ताड़न, भर्षण व्यवहार। सख्य का गुण असंकोच और अगौरव का सार तो रहता ही है, ममता की अधिकता होती है वात्सल्य भाव में, इसीलिए कृष्ण के प्रति ताड़न भर्षण व्यवहार चलता है, मारने की धमकी और डांटना ये सब भी चलता है। अपना रे पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, भक्त यही समझता है कि मैं पालन करने वाला हूं कृष्ण का, और कृष्ण पाल्य है। चार ही गुणे वात्सल्य रस अमृत समान, तो ये चार गुण आ जाते हैं, शांत दास और सख्य के तीन, और ममता धिक के ताड़न भर्षण, तो ये चार गुण वात्सल्य में आ जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चार गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। सब तो अमृत ही है लेकिन विशेष यहां अमृत समान कह करके और सबसे श्रेष्ठता बता रहे हैं। से अमृतानंदे भक्त, से अमृतानंदे भक्त सब डूबे न अपने, कृष्ण भक्ति बस गुण कहे ऐश्वर्य ज्ञानी गणे। जो ऐश्वर्य का ज्ञान रखते हैं ये भक्त लोग कहते हैं कि इस भक्ति रस के वश में भगवान रहते हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितव्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्ति वन्दे। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं ये बातें यहाँ कही गई। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय सखेर असंकोच लालन ममता धिक्य है कांत भावे निजंग दिया करेन सेवन करेन सेवन अतएव मधुर रसेर है पंच गुण। अब मधुर रस की बात सुनिए। तो आज तो संडे है ना, तो कोई बात नहीं है देर हो रही है। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा, अब देखिए मधुर रस में क्या है, शांत की निष्ठा रहती है बहुत बहुत दृढ़ होकर के। शांत भक्त की निष्ठा मधुर रति के भक्त में रहती है और दास्य का सेवन रहता है और सख्य का असंकोच और वात्सल्य का ममता धिक के लालन और अपना कांत भाव में निजांग दिया करे न सेवन। इतनी ममता होती है कृष्ण के प्रति कि अपना शरीर दे करके प्रिया सेवा करती है भगवान की। अपने शरीर को गोपियां इसलिए सजाती हैं कृष्ण देख करके सुखी होते हैं। तो कांत भावे निजंग दिया करे न सेवन अतएव मधुर रसर है पंच गुण। इस तरह से मधुर रति में पांच गुण हैं। आकाश आदि गुण जिन पर भूते यही दुई तीन चार क्रमे पंच पृथ्वी थे। तो जैसे आकाश में एक गुण है आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श और अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तो पृथ्वी में आकाश से लेकर के जल पर्यंत इन चारों के चारों की तन्मात्रा है पृथ्वी में। तो पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों है। तो इस तरह माधुर्य में ये पांचों रस हैं, पांचों भक्ति सम्मिलित अपना एक और चार अन्य भक्ति रस। यही मतम मधुर मधुरे सब भाव समाहार। इस प्रकार यही मतम मधुर है, इस प्रकार मधुर रति में रस में सब भाव समाहार अतएव आस्वादाधिक के करे चमत्कार। इसलिए यह मधुरा रति माधुर्य भाव आस्वाद चमत्कार पैदा करता है। यह अद्भुत रस है, अद्भुत आनंद मिलता है इसे। यही भक्ति रसे करिलाम दिग दर्शन, यही भक्ति रसे करिलाम दिग दर्शन इहार विस्तार भावे करी है भावन। इहार विस्तार माने करी है भावन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप यह है भक्ति रस जिसका मैं केवल दिग्दर्शन किया, थोड़ा सा बताया। इहार विस्तार माने करी है भावन, खूब विस्तार से इसको लिखना। तुम भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ लिखना ये भगवान बता रहे हैं, तुम विस्तार से इसकी व्याख्या करना। मैं संक्षेप में बताया दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का अर्थ मैंने बता दिया, दिशा इधर जाओ इधर जाओ। अथवा जैसे शाखा चंद्र न्याय से बताया कि किसी वृक्ष के ऊपर यदि चंद्रमा दिखाई दे रहा हो तो कभी कभी हम लोग कह देते हैं चंद्रमा वृक्ष के ऊपर है, लेकिन वो वृक्ष से बहुत दूर है, वृक्ष के ऊपर नहीं है, इसको दिग्दर्शन कहते हैं। कहां जाना है तो इस दिशा में जाना है, तो क्यों दिग्दर्शन बताया, संकेत किया। आप पहले कहे थे कि भक्ति रसामृत सिंधु के एक बिंदु को चखा रहा हूं तुमको, यहां कह रहे हैं तुम विस्तार करना, इसका खूब बताना, इस सबका विस्तार रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है। हरे कृष्ण। तो ठीक है, यहीं बंद करते हैं।